सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अनामिका जैन, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, एमए फर्स्ट ईयर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत कथेतर गद्य साहित्य के गबन उपन्यास से गबन उपन्यास में आई हुई समस्याओं पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आभूषण प्रेम, जो भारतीय जीवन की सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है, इस उपन्यास का कथ भी है। हमारा भारतीय समाज, विशेषता इस समाज की स्त्रियां अपने आभूषण प्रेम के लिए बदनाम है। प्रेमचंद ने इसी समस्या को साहित्य का विषय बताते हुए गबन की रचना की। यह समस्या समाजव्यापी है। गबन उपन्यास में इस समस्या को रोग का विशेषण देते हुए प्रेमचंद ने कहा है, जहां देखो हाय गहने, गहने के पीछे जान दे दे, घर के आदमियों को भूखे मारे, घर की चीजें बेचे और कहां तक कहूं अपनी आबरू बेचे, छोटे बड़े अमीर गरीब सबको यही रोग लगा हुआ है। इस कथन के माध्यम से प्रेमचंद ने समाज के उस स्त्री वर्ग पर प्रहार किया है जो आभूषण प्रेम में अपने आंखों के सामने अपने घर को तबाह होते हुए भी अपनी आंखों में पट्टी बांधकर सिर्फ तोते की भांति रत लगाई रहती है। इस उपन्यास की नायिका जालपा भी आभूषण मंडित संसार में पलकर अपने रक्त में भी आभूषण के प्रति अगाध प्रेम की लालसा लेकर ससुराल आती है। मालती, जो जालपा की माँ है, 600 रुपए का चंदहार अपने लिए बनवाती है, जबकि उसकी बेटी की उम्र 100 पूरे करने योग्य है। रतन, जो जालपा की सहेली है, को भी गहनों से अत्यधिक लगाव है। बाजार में आए प्रत्येक नए डिजाइन के आभूषण की चाह उसके दिमाग में छाई रहती है। रमानाथ की माँ राजेश्वरी, जो जालपा की सास है, अपने पति के उसूलवादी सोच और रिश्वत न लेने की कसम के कारण आभूषण के लिए आजीवन तरसती रहती है। जग्गो, एक गौण स्त्री पात्र के आभूषण प्रेम के कारण उसका पति देवी दीन जेल भुगत चुका है, लेकिन अभी भी आभूषण के प्रति लालसा कम नहीं हुई है। 2-4 आभूषण बनवाने की ललक बनी ही रहती है। प्रेमचंद ने प्रत्येक स्त्री पात्र के माध्यम से आभूषण प्रेम के कारण होने वाले दुष्परिणाम को उपन्यास में बहुत ही यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया है। अब हम आते हैं इस उपन्यास की दूसरी समस्या की तरफ, जो है पुलिस के हथकंडों की समस्या। प्रेमचंद ने इस उपन्यास की सृष्टि उस मोड़ पर की जब राजनीति के हथकंडे के तौर पर निरापराधियों को सरकारी मुखबिर बनाने के लिए विवश किया जाता था। मुखबिर बनाना उस समय पुलिस विभाग का एक मुख्य कर्तव्य हो गया था, जिसके लिए वे नौकरी, पुरस्कार आदि प्रलोभन के साथ साथ वैश्या, मदिरा, मांस आदि विलासता की सामग्री को भी ढाल के रूप में प्रयोग करते थे और मुखबिर के विवेक को शून्य कर देते थे। गबन में भी इस समस्या का आभास हमें मिलता है। रमानाथ द्वारा सरकारी पैसों के गमन के कारण किस प्रकार पुलिस रमानाथ को सरकारी मुखबिर बनने के लिए विवश करती हुई उसे मांस, मदिरा, वैश्या आदि का प्रलोभन देते हुए विवेक शून्य कर देती है। इस प्रकार प्रेमचंद ने पुलिस के हथकंडों को उसकी पूरी बारीकियों के साथ उपस्थित किया है, जो उपन्यास का एक तिहाई से अधिक भाग घेरता है। अब हम बात करेंगे तीसरी समस्या की तरफ, जो है बेकारी की समस्या। सन 1931 में गमन का प्रकाशन हुआ था। उस समय बेकारी देश की एक महत्वपूर्ण समस्या थी। वस्तुतः आज भी यह समस्या सोचनीय है। रमानाथ मध्य वर्गीय बेकारों का एक प्रतिनिधि पात्र है। हम पाते हैं ये समस्या ना तो उच्च मध्य वर्ग के एडवोकेट इंदु भूषण सरीखे स्वतंत्र और अधिक आय वाले पेशेवरों में है और ना ही निम्न वर्ग के देवी दीन जैसे अपने उद्योग में विश्वास रखने वालों में है। ये समस्या विशेषता मध्य वर्ग में दिखाई देती है। गमन के प्रायः सभी मध्य वर्गीय पात्र नौकर हैं। दयानाथ, रमानाथ, रमेश बाबू सभी कचहरी के अहलाकार हैं। ये सभी आर्थिक दृष्टि से परेशान हैं। कारण है, सभी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर लेते हैं, लेकिन हाथ में कुछ बचता नहीं है। कुल मिलाकर प्रेमचंद ने गमन के द्वारा बेकार लोगों को ये संदेश दिया है कि नौकरी का मुंह हमेशा देखना उचित नहीं है। व्यक्ति को अपने उद्योग में हर पूर्वाग्रह और दिखावती आदतों को छोड़कर जुट जाना चाहिए। गबन का पर्यावसान भी श्रम मूलक ग्रामोद्योग में होता दिखाई देता है। अब हम आगे की समस्या की तरफ बढ़ते हुए बात करेंगे घूस की समस्या पर। प्रेमचंद ने घूस लेना चाहिए या नहीं, दोनों स्थितियों को उपन्यास में स्थान दिया है। घूस लेने के पक्षधर हैं रमानाथ और रमेश बाबू। विरोधियों में नाम आता है मुंशी दयानाथ का, जो रमानाथ के पिता हैं, जिन्होंने जिंदगी में कभी भी अपने उसूलवादी सोच के कारण कभी भी घूस नहीं ली, चाहे उन्हें जीवन पर्यंत क्यों ना इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। प्रेमचंद किसके समर्थक हैं, ये कहना सर्वथा कठिन है। इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि जहां जहां घूस लेने देने का प्रकरण उपन्यास में आया है, वो पूर्णता यथार्थ और हमसे परिचित है। अब हम बात करेंगे अगले समस्या की तरफ, और जो है मध्य वर्ग में प्रदर्शन की प्रवृत्ति की समस्या। प्रेमचंद ने रमानाथ के विवाह के प्रसंग में इस समस्या की ओर पूरा ध्यान दिया है। घूस के घोर विरोधी मुंशी दयानाथ भी कल्पित आबरू के चक्कर में पड़कर प्रदर्शन के पीछे खूब धन खर्च करते हैं। कम पढ़े लिखे और कम उम्र वाले रमानाथ का तो कहना ही क्या, वो आतिशबाजियों, नाच गाने, कार आदि में तिलक में आए सारे पैसे को खर्च कर देता है। परिणाम क्या होता है कि सुनार के रुपए चुकाने के लिए पति को प्रिया का तथा घूस और असत मूलक कामों के घोर विरोधी ससुर को अपने पुत्र वधू के गहने की चोरी मिलकर करनी पड़ती है। ये इसी प्रदर्शन का मूल्य है। प्रदर्शन की यह प्रवृत्ति युवतियों में अधिक पाई जाती है। जालपा घर से बाहर इसलिए नहीं निकलती है कि उसके पास आभूषण नहीं है। आभूषण और पैसे आते ही वो सारे मोहल्ले की महारानी बन जाती है। चादर से काफी ज्यादा पांव फैला देती है और परिणामता स्वरूप पति गबन करने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन जालपा को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था, नहीं तो वो ये कभी ना करती। अब हम नेक्स्ट समस्या की तरफ बढ़ते हैं, जो है स्वतंत्रता प्राप्ति की समस्या। स्वतंत्रता प्राप्ति की समस्या हमें देवी दीन के आगमन के साथ दिखाई देती है। स्वतंत्रता युद्ध का वास्तविक सैनिक कौन है, स्वतंत्रता कैसे प्राप्त होगी, नेताओं की स्वतंत्रता का क्या खाका है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर देवी दीन के चरित्र के माध्यम से मिलता है। अब बात करेंगे मजदूरों की समस्या पर। गबन में, वैसे तो ये समस्या गबन में बहुत ही छोटे परंतु अपने में पूर्ण प्रसंग लेकर उपस्थित हुई है। देवी दीन के माध्यम से दान धर्म में व्यस्त रहने वाले सेठियों की पोल खोली गई है। किस प्रकार वे मजदूरों के साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार करते हैं और यहाँ तक कि आदमियों को हंटरों से पिटवाते हैं, चर्बी मिला घी बेचकर लाखों कमाते हैं, कोई नौकर एक मिनट भी देरी से आए तो तलब काट लेते हैं। ऐसे में अगर साल में 2-4 हजार दान न कर दें तो पाप का धन पचेगा कैसे। और इस प्रकार से देवी दीन ने सेठियों की पोल खोली है। अब हमने सारे समस्याओं पर संक्षिप्त में प्रकाश डाल दिया है और निष्कर्षता यह निकलता है कि गमन उपन्यास में उन सभी समस्याओं को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है जो उस समय की विकट समस्याओं में से एक थी, यद्यपि किसी हद तक आज भी विद्यमान है।